आज का ये जो समाचार है और इसमें हम भाई फ्रैंक के द्वारा वचन की बातों पर ध्यान करेंगे और हम क्रेफेल्ड से सारे भाई बहनों का, सारे संसार के लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं और बहुत धन्यवादी हैं कि इस समय के लिए, इस अवसर के लिए कि हम प्रभु के वचन को सुन सकते हैं जो उसने प्रकाशित किया। और ऐसा होने दे कि प्रभु आज भाई फ्रैंक को सामर्थ्य दे, कुवत दे और जिससे कि वो बातें बता सकें जो कि प्रभु ने उनके मन में आज के लिए दी हैं। इससे पहले भाई फ्रैंक हमसे बात करें, मैं वचन से पढ़ूंगा, पहला थिसलोनियों और दूसरा अध्याय और 2:13। पहला थिसलोनियों 2:13, पहला थिसलोनियों 2:13। क्योंकि इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, निरंतर करते हैं, जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुषमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, जो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, क्योंकि तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं भी इस चीज की गवाही दे सकता हूं अपने सारे मन से कि कुछ और प्रचार नहीं किया गया, सिर्फ सिर्फ खाली परमेश्वर का, खुदा का खालिस कलाम, जैसे कि खुदा ने हमसे कहा और परमेश्वर ने मुझे बताया और कि मैं तुझे, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें अलग अलग देशों, अलग अलग नगरों में लेकर जाऊंगा और सारे संसार में वचन का प्रचार होगा, ये वो आज्ञा है जिसकी आज्ञा मुझे दी गई। और मैंने इसको पूरा किया, इसको कार्यान्वित किया, इस पर अमल किया और पिछले 55 साल गुजरे हैं और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवादी हूं और आभारी हूं कि आज, क्यों मैं बहुत सारी ग्रीटिंग्स पर्सनली तो नहीं दे सकता, कितने इतने सारे भाई हैं जो सारे संसार से भाई लोग हैं जो कि अपनी अपनी ग्रीटिंग्स और बधाइयां मुझे भेजते हैं और शुभकामनाएं मुझे भेजते हैं जो प्रभु ने से जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं दो बातों के बारे में बताना चाहूंगा खास तौर पर सारे भाइयों को जिन्होंने मुझसे कहा कि पिछले हफ्ते के 28 फरवरी था पिछले हफ्ते कि वो दिन था जिस दिन की बड़ी सारी बातें, काफी अद्भुत बातें हुई 1963 में। 1963 में 28 फरवरी को ऐसा हुआ और मुझे ये बहुत झकझोर करता है, बते सोचने पर मजबूर करता है जब मैं सोचने की कोशिश करता हूं क्योंकि परमेश्वर जो है, खुदावन जो है, बड़े अलौकिक तरीके से हमारे बीच में काम किया खुदावन ने और आज भी वो निरंतर वो काम कर रहा है। लेकिन 28 फरवरी को 1963 को वो जो महान घटना घटित हुई, वो प्रभु वो एक के प्रभु एक अर्थक्वेक में आ गया, एक और थंडर क्लैप्स में, सात गर्जन की आवाजों में प्रभु आ गया ऐसा बोला गया। और 42 मील तक, ट्यूसॉन से, एरिजोना से 42 मील की दूरी पर जहां भाई ब्रैनम थे, और वहां पर, और उन्होंने वहां पर भाई ब्रैनम को वो आज्ञाएं और वो शिक्षाएं मिली कि वापस जेफरसन विल में जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है कि सात मोहरों मोहरें खोली जाएं। हमारे पास ये अवसर था, ये मौका था। हम 1966 दिसंबर में, हमारे पास ये मौका था कि हम उस जगह को देख सकते, हम उस जगह को देख पाए जहां ऐसा हुआ था मेरे भाई और बहनों। ये एक बात है, इसके बारे में सुन लेना एक एक बात है, पर और दूसरी खास बात यह है कि इस जगह को, इस मौके की जगह को खुद मैंने अपनी आंखों से वहां जाकर देखा, और जहां पर कि पेड़ों से टूटी हुई डालियां, ऊपर से टूटे हुए पेड़, और मैंने वहां जो पत्थर गिरे हुए थे, चट्टानों के टुकड़े गिरे थे उनको देखा, और जो पहाड़ों से नीचे गिरे थे उनको देखा, और वो नीचे घास में गिरे हुए थे, क्योंकि ये एक इतना बड़ा अर्थक्वेक वहां पर आया था, भूकंप वहां पर आया था। मैं ये फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ने, खुदा ने मुझे ऐसा फजल दिया, ऐसा अनुग्रह दिया कि मैं भाई ब्रैनम के साथ 10 साल तक जुड़ा रह सका। और इस बात को मैं देख सका और सुन सका और इसकी गवाही देख सका कि जो जो वहां हुआ। पर मैं उसके बारे में कोई डिटेल नहीं बता रहा, पर हम जानते हैं कि मार्च में 17 से 24 मार्च तक 1963 में भाई ब्रैनम ने उस मकाशवा, उस प्रकाशन के द्वारा सात मोहरों के बारे में बयान किया, प्रचार किया। और फिर, और जैसा जैसे कि 22 चैप्टर्स में मकाशवा, प्रकाशित वाक में 22 चैप्टर्स में लिखा हुआ है, 22 अध्यायों में लिखा है, हम इसके लिए खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं जो वहां लिखा है कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं, प्रभु के वापसी आने के, वापस आने के समय से जस हम पहले उस समय में रह रहे हैं, और ये सारी बातें हमारे वक्त में, हमारे समय में बताई गई हैं, और ये सारी बातें कलीसिया में पहुंचाई गई हैं कि हम जो रैप्चर में भागी होने के भागीदार हैं, हमको ये बातें बता दी जाएं और पता लग जाए हमको कि क्या होने वाला है और इन बातों का क्या मतलब है, और इनका हमें पूरी तरीके से एक्सपीरियंस हो जाए, अनुभव हो जाए। और हम पढ़ते हैं आगे, इससे पहले कि हम आगे वचन पढ़ें, मैं ईरान में अपने भाई को खुदा की आशीषें देना चाहता हूं, जो फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जो वहां पर ईरान के एरिया में प्रचार की जाती है, वो वचन का अनुवाद कर रहे हैं फारसी लैंग्वेज में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जहां पर भी हो, हर जगह पर ये संदेश जो है ये भेजा जा रहा है और प्रचार किया जा रहा है। हम बड़े प्रभाव, बड़े अभावी आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मरकुस एक से तीन आयत। मरकुस एक से तीन आयत। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसा यशाया के द्वारा लिखा गया, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, और जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु का धन्यवाद हो। और एकदम शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही हमको ये बताया गया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि जैसा कि बड़े बड़े गुरु लोगों ने अनुवाद किया, नहीं, बल्कि जैसा कि यशाया नबी के द्वारा प्रचार किया गया, बताया गया, भविष्यवाणी करी गई, और मलाकी 3 पहली आयत में बताया गया। मेरे भाई और बहनों, ये मेरे लिए इसका इतना महत्व है, और मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप इस बात को समझें, जैसा कि हर चीज की शुरुआत हुई और प्रभु की योजना में, उसके प्लान में जैसे सारी चीजें मुकर्रर की गईं, जैसा कि उनको कलाम में बताया गया और नबियों के द्वारा बताया गया, इसी तरीके से जैसे वो शुरुआत हुई, इसी तरीके से उसका खात्मा भी होगा, अंत भी होगा, जैसा पहले से बताया गया, जैसा नबियों के द्वारा बताया गया, और जैसा कि रसूलों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा भी बताया गया। और मुझे इस चीज पर जोर दे के ये बात कहना है कि हमारे प्रभु और हमारे बचाने वाले, हमारे नजात दहिंदा के ने खुद कहा, और हम और आगे पढ़ते हैं, ये आगे फिर पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं मत्ती 24 3 और 4 आयत, मत्ती 24 3 और 4 आयत। मत्ती 24 3 और 4 आयत में, जब जैतून के पहाड़ पे वो बैठा था तो चेलों ने एकांत में आके उससे कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि उसने ये जो वचन हमारे को दिया, मैं कई बार इसराइल जा चुका हूं और मैं जैतून के पहाड़ पर भी गया हूं, और मैंने वहां से नीचे देखा और उस घाटी को देखा, उस वैली को देखा, जहां पर राइट हैंड पर गच्छमनी का बाग है और फिर टेंपल माउंट है। और मेरे भाई और बहनों, जैसा के चेले खुदावन के पास आए, हमारे प्रभु के पास आए और उससे पूछा, और उसने उनको जवाब दिया, उनके 3 सवालों का उसने जवाब दिया, इसी प्रकार से हम भी आज अपने प्रभु के पास आते हैं और हम उससे पूछते हैं और वो हम उससे पूछते हैं और वो हमें जवाब देता है। ना सिर्फ वो 3 सवाल, बल्कि और बहुत सारे सवाल जो हमारे सामने खुले रहते हैं कलाम में लेकर के, जो कि आखिरियत के वक्त के बारे में बयान करते हैं, जो प्रभु आज भी इस समय में भी प्रभु हमें जवाब देता है। और यहां पर बात यह है कि पिछली मीटिंग में अपने जो लास्ट मीटिंग में मैंने बताया था, अपने अपने कानों को मेरी ओर लगाओ, प्रभु कहता है, हमारे समय में भी हम अपने कानों को किसी दूसरे व्यक्ति की बातों पर ना लगाएं, बल्कि प्रभु की बातों की ओर अपने कानों को लगाएं जब वो हमसे बात करता है, जब वो अपने वचन से हमसे बात करता है। हम अपने कानों को प्रभु के कानों की ओर लगाऊं, ये प्रभु कहता है, जिससे कि मैं तुमसे बात करूं। और आज हम प्रभु के चेले हमारे सामने थे, यहां थे, और जो आपस में बात कर रहे थे और जो बात कर रहे थे प्रभु से बात कर रहे थे, वो प्रभु से बात कर रहे थे, किसी दूसरे और गुरुओं से बात नहीं कर रहे थे। वहां पर आपस में कोई वाद विवाद नहीं हो रहा था, जहां हमारा प्रभु था, और हमारे प्रभु ने स्वयं खुद ही उनके सवालों का जवाब दिया। और इसी प्रकार से आज भी हमारे साथ यही हालात हैं, यही समय है। और मैं कभी भी बाइबल के ऊपर हम किसी वाद विवाद में नहीं पढ़ते, मैं नहीं पढ़ता इस वाद विवाद में, और हम नहीं, और हम कभी भी इस वाद विवाद में नहीं पढ़ेंगे। हम प्रभु के बच्चे होने के नाते अपने प्रभु के पास आते हैं और उसके चरणों में बैठकर उससे पूछते हैं, हे प्रभु हमसे बात कर और हमें समझा और हमें बता और तू हमें जवाब दे और ये बता कि सही समझ हमको दे कि हम तेरी बातों को भली प्रकार से समझ पाए। और प्रभु सचमुच में हमारी बातों को हमें बताता है कि इज़राइल का क्या होगा, हैकल का क्या होगा, यरूशलेम का क्या होगा, वो सारी बातों क्या क्या होगा, कि ये जो नजात का पैगाम है ये सारी दुनिया के लोगों में, सारे मुल्कों में प्रचार किया जाएगा गवाही के तौर पर, और तब अंत आ जाएगा। वो सारी बातों का जवाब देता है। और अब प्रभु के आने की, आमद की हर एक घटना के बारे में, मौके के बारे में वो बयान करता है कि जो दो यहां होंगे, दो वहां होंगे, और उनमें से एक को ले लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। इस समय इस बात पर भी कि ये जो आत्मिक भोजन है, ये रूहानी खुराक जो है, ये सही समय में, सही मौसम में बांटा जाएगा, दिया जाएगा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि खुदा का जो लोग हैं, कि मनुष्य जो है, जो खुदा का जन है, वो रोटी से नहीं बल्कि वो हर एक उस शब्द से, अल्फाज से जो खुदावन के मुंह से निकलता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये सारा का सारा वचन आज हमारे सामने प्रचार किया जा चुका है, बताया जा चुका है। अब हम और आगे पढ़ते हैं हम यूहन्ना 13 बाब को पढ़ते हैं और उसकी 20 बाद, यूहन्ना 13 और 20 को पढ़ते हैं। यूहन्ना 13:20 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, रिसीव करता है, वो मुझे रिसीव करता है, जो मुझे रिसीव करता है वो मेरे भेजने वाले को भी रिसीव करता है। आमीन। और हम इसको आमीन कहते हैं। ये ऐसा ही है और हमने इसको पढ़ा, इसको समझा, और हमने शुरू में इसको पढ़ा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसको जो वादा किया हुआ नबी था, जो प्रभु की पहली आमद के पहले सामने आया और उसकी पहली आमद पर से सामने आया, और वो एक ऐसा मनुष्य था जो खुदावन की तरफ, खुदा की तरफ से भेजा गया था, और जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको रिसीव किया, और वो यरदन नदी में गए और उन्होंने पश्चाताप किया, तौबा किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, और वो बपतिस्मा लिया, उन्होंने तौबा का बपतिस्मा लिया। वहां पर भेजने के बारे में बात नहीं करी जा रही, सिर्फ वहां तो आज्ञाकारी हुक्म मानने के बारे में भी बात करी जा रही है। और वो उस समय उन्होंने बपतिस्मा लिया और माफी के बारे में, जो कि माफी जो सबको बाद में मिलेगी उसके बारे में, जबकि वो मेमना जो खुदावन का मेमना, खुदा का मेमना जो था, जब वो क्रूस पर मरा और अपना लहू उसने बहाया और उसने कहा कि मैं इस चीज को दोबारा, मैं जोर से कहना चाहता हूं, इसका हमारे लिए कोई इस्तेमाल नहीं, कोई यूज नहीं है, कोई मोल नहीं। अगर हम सिर्फ इतना ही मान लें कि खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, हमको ये पता होना चाहिए कि खुदा ने हमारे समय में किसको भेजा, खुदा की योजना, उसका प्रोग्राम हमारे समय में क्या है, और खुदा ने जो वह हमारे समय के लिए क्या वादा दिया है। और यही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हम मत्ती 10 को पढ़ने जा रहे हैं, 40 और 41। मत्ती 10 40 और 41। जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और अब हम इस बात में हां और आमीन कहते हैं। अगर कोई आत्मिक तौर पे भेजना है तो, और उसका कलाम में बेस पाया जाता है, कलाम में उसकी फाउंडेशन पाई जाती है, चाहे कोई भी हो, जो उसको भूल जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता, वो तो अविश्वासी है और उसको ये पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर यानी प्रभु आज क्या कर रहा है। वही, केवल वही जो उसको ग्रहण करते हैं, जिनको खुदा भेजता है और उस पर विश्वास करते हैं, और वही खास तौर पर व्यक्तिगत शख्सी तौर पर उसका अनुभव भी करते हैं, और कि प्रभु आज क्या कर रहा है और प्रभु ने क्या कहा। हम आगे पढ़ते हैं और 41 आयत अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर, यानी नबी जानकर रिसीव करता है, वो उस नबी का यानी भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। ये देखिए कितनी महान बात है, ये कितनी अद्भुत बात है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रभु ने कहा। और अब आप देखिए, आप इस चीज को देखिए कि इसकी गहराई को देखिए, समझिए, जो एक नबी को रिसीव करता है, उस जिसको प्रभु भेजता है, वो उस नबी के उस इनाम को पाएगा, उसका हकदार होगा जो नबी के लिए खुदा ने ठहराया है, जो नबी को ये रिवॉर्ड कोई रिसीव कर। हमारा भी वही बदला होगा, वही हमारा इनाम होगा जो कि भविष्यद्वक्ता यानी के भेजे हुए के लिए खुदा ने मुकर्रर किया। आगे अगले स्क्रिप्चर में जाते हैं, दूसरा पत्रस 1:3-4। दूसरा पत्रस 1:3-4 आयत, दूसरा पत्रस 1:3-4 आयत, दूसरा पत्रस 1:3-4 आयत, दूसरा पत्रस 1:3-4 आयत। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो, हम सब इस आयत को दोबारा पढ़ें। क्या पढ़ा गया? खुदा ने, परमेश्वर ने हमको सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में दे दिया, हमारे प्रभु में दे दिया। प, पर वो हमें आज्ञाकारी यानी कि हुक्म मानने वाला बनाना चाहता है। हम सचमुच में हुक्म मानने वाले बने और विश्वास करने वाले बने कि प्रभु ने, खुदा ने आज हमारे लिए क्या वादे किए हैं और उनके अंदर सच्चा हमारा हमारा हम भागीदार, सच्चे भागीदार उसके अंदर हों जो प्रभु ने आज ठहराया। आज के बारे में यही बात है जो जरूरी है। जैसा जैसा लिखा है कि आज अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो हम भी कहें, जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह यानी आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और हम फिर दोबारा कहते हैं, अपने अपने कानों को खुदावंद की तरफ परमेश्वर की ओर लगाएं और हम ये फिर से कहें, यीशु मसीह उसने अपने लोगों को अलग से ले जा करके, खास तौर पर माउंट ऑफ ऑलिव्स पर ले जा करके उनसे बातचीत करी और उनको बताया ये सारी बातें जो हैं, ये हमारे जीवन में भी ये तीन बातें इस प्रकार से पूरी हों, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा विश्वास है कि ऐसा हो और उसके अनुभव से, उसके उसके अनुग्रह से, फजल से ऐसा हो। हम तो इस कार्रवाई के, इस काम के पूरे होने के बीच के समय में रह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, अब हम चौथी आयत पढ़ रहे हैं यहां पर। इसके द्वारा हमें बहुमूल्य बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी यानी खुदाई स्वभाव नेचर के सहभागी हो जाओ। ये चौथी आयत थी, दूसरा पत्रस पहले बाप की चौथी आयत। और ये भी कितनी पावरफुल प्रभावशाली आयत है, इतनी कितनी बड़े प्रॉमिसेस और प्रतिज्ञाएं और वादे उसने हमसे किए हैं, जिससे कि मैं और आप हम इस समय में भी उस चीज के भागीदार हो जाएं, शरीक हो जाएं, जो कि खुदावन खुदा की जो नेचर है, उसका जो चरित्र है, और उस वचन के भागीदार हो जाएं और उसका वचन कलाम हमारे अंदर एक बीज की नाई बो दिया जाए, जिससे कि वो सारी चीजें हमारे साथ पहले से बता दी गई हैं, जिससे कि हम चीजों के भागीदार और अनुभव करने वाले बन जाएं, इस कलाम के अनुभव करने वाले बन जाएं। खुदावन का जो पाक कलाम है, इसके अंदर जो वादे पाए जाते हैं और जो उसके जो प्रॉमिसेस हैं, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो हम पर लागू हो जाएं। और इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। सिर्फ कहना ही नहीं कि हम विश्वास करते हैं प्रभु के वादों का, सिर्फ ये कहना ही नहीं, और हम उसकी उसकी उसके चरित्र के भागीदार हैं, पर फिर सचमुच में इस बात को अपने दिल से लगा लें, दिल में बिठा लें कि हम ये विश्वास करते हैं, कि इन सारी बातों पर हम विश्वास करते हैं जो इस समय के जो प्रतिज्ञाएं दी गई, अपने मन से अपने दिल से विश्वास करते हैं, और इसलिए इस प्रकार से हम इस नेचर के जो जो उसका जहन था, जो उसका स्वभाव था, वो खुद खुदावन का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए और हम नए सिरे से पैदा हो जाएं उस नई आशा के साथ, उस नई इच्छा के साथ, और वो खुदावन की जो इच्छा है, जो उसका जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो नेचर है, उसका जो जहन है, वो हमारे अंदर में दिखना शुरू हो जाए और हम और उसको वो दिखना शुरू हो जाए कि ये दिखना शुरू हो जाए कि क्या हम उस जहन के, उस नेचर के पार्टेकर हो चुके हैं, और क्या हम इसके भागीदार हो चुके हैं उस जहन के, उस नेचर के, उस कैरेक्टर के जो यीशु का। और खुदा उनका बड़ा धन्यवाद हो, और इस वचन के लिए उसका बड़ा धन्यवाद हो। हम आगे पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं गलतियों 5 और 5 और 22 और 23 आयत। गलतियो 5 और 22 और 23, गलतियों 5 22 और 23, गलतियों 5 22 और 23, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे भाई और बहनों, यहां पर अभी हमने पढ़ा, यहां पर 9, उन 9 फलों के बारे में जो पवित्र आत्मा के फल है उनके बारे में अभी पढ़ा गया कि जो इसका भागीदार बना, जो खुदावंद की नेचर का, आत्मिक नेचर का भागीदार है, उसी के अंदर ये फल, उसी के अंदर, जिसके अंदर प्रभु वास करता है, जिसके अंदर प्रभु का जीवन पाया जाता है, जिसके अंदर प्रभु का जीवन दिखता है, वही जहां पर प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है सारी सच्चाई के साथ, वहीं वहीं पर ये जो फल अभी पड़े गए हैं, वहीं पर ये सारे के सारे फल दिखाई देंगे। मुझे माफ करें कि अगर मैं यहां कोई तुलना करनी शुरू कर दूं, मैंने इस बात को देखा कि मैंने पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को भी देखा है। 1949 से मैंने पेंटिकॉस्टल मूवमेंट को देखा, मैंने देखा अपनी आंखों से कि बहुत सारे लोग जो आत्मा में, जिनका बपतिस्मा हो रहा था, और मैंने गिफ्ट्स को ऑपरेट होते हुए देखा है। पर उस समय में मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि वो जो गिफ्ट थे वहां पर, मैंने इन फलों को जो आत्मा के फल हैं वो मुझे दिखाई नहीं दिए, वो नाजिल होते नहीं दिखाई दिए, वो जहूर में आते दिखाई नहीं दिए। बहुत सारी गलत फहमियां वहां पर शुरू हो गई, वहां पर इतने सारे तफिरकेबाजी वहां हो गई, इतने सारी बातें वहां हो गई, जहां पर लोगों ने जुबानों में बात करी, भविष्यवाणियां करी, अनुवाद किए, जहां पर कि गिफ्ट्स ऑपरेट कर रही थी, वहां पर बड़ी सारी गिफ्ट्स ऑपरेट कर रही थी, पर वहां पर फल जो मैंने देखा, मैंने जो इन दिनों में जो फल देखे हैं, मेरे भाई और बहनों, हम जैसे भाई ब्रैनम ने साफ तौर पे बता दिया, आज हम पेंटिकॉस की अवस्था में नहीं हैं, आज हम उस अवस्था में हैं जहां के दुल्हन को पेंटिकॉस्टल मूवमेंट से, दुल्हन को बाहर निकाल लिया गया है, उस स्टेज से, अवस्था से बाहर निकाल लिया गया है, और ये बता दिया गया कि प्रभु हर चीज में, और प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं और जो उसके वादे हैं वो आज पूरे हो रहे हैं। और हम बड़ी ईमानदारी से इस बात को इकरार करें कि हम कि जो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट जो था सारा का सारा, और उसमें बहुत सारे अलग अलग दिशाएं और दशाएं हैं, वो सारी दिशाएं और शिक्षाएं जो हैं वो इस बात से परे हैं, इस बात में शामिल नहीं है कि प्रभु आज क्या कर रहा है। और उन्होंने नबुवत तो करी, उन्होंने जुबानों में तो बात करी, पर वो प्रभु को छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने ये बात आज नहीं देखा कि आज प्रभु क्या कह रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रभु के पैरों पर बैठकर उससे ये नम्रता से, हलीमता से ये दया प्रार्थना नहीं करी कि है प्रभु, जिनके पास ये पेंटिकॉस्टल पीचर जो थे, ये क्या मत्ती 17 के बारे में क्या कह सकते हैं, जबकि मूसा और एलाइजा दोनों जो थे ट्रांसफिगरेशन के माउंट पर अपियर हुए यीशु के साथ, और वहां प्रभु था, पर वहां पर प्रभु भी ट्रांसफिगर, उसका अवतरण हुआ, और वहां पर जो 3 शिष्य थे जो प्रेरित थे, और वो बड़े प्रभावित हो गए और वहां पर बड़ी महिमा को उन्होंने देखा। पर एक बहुत बड़ी बात वहां हुई, बड़ी घटना वहां पर हुई, और सवाल ये आ गया कि क्यों 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 ये कहा गया कि एलिया पहले आएगा। मेरे भाई और बहनों, इतनी देर तक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की शिक्षा के बाद ये आज हमारे, उसके बाद ये माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे ये सवाल पूछा गया, पतरस से नहीं पूछा गया, याकूब से नहीं पूछा गया, यूहन्ना से नहीं पूछा गया, पर हमारे प्रभु से पूछा गया। और हमारे प्रभु ने जवाब दिया कि एलिया तो पहले आएगा और सारी चीजों को बहाल करेगा। आमीन आमीन। प्रभु के नाम को बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अब जब हमको ये कहना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मैं तुझसे कहता हूं कि उसने कहा कि एलिया तो आ चुका, वो तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कह रहा था, और वो आत्मा में और सेविकाई में होकर आया एलिया की। पर अब मैं ये पूछता हूं, और सारे पेंटिकॉस्टल प्रीचर से मैं ये पूछता हूं, और सबसे ये पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि अपनी बाइबलें खोलो और मुझे बताओ, और ये बताओ मलाकी तीन जो है, ये प्रभु यूं फरमाता है, परमेश्वर यूं फरमाता है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है। और मलाकी चार जो है वो उस बारे में नहीं है, क्योंकि वो तो बात हमको मरकुस एक एक में बता दी गई, और ये हमारे को बता दी गई सफाई से हमारे समय में। मलाकी चार जो है वो पूरी हुई है कि प्रभु परमेश्वर हमारे समय में एलिया के समान एक नबी को भेजेगा जो कि सारी चीजों की बहाली करेगा, जो के बच्चों के बच्चों के मन को वापस पितरों के यानी बुजुर्गों के मन की तरफ ले जाएगा। क्या एक पेंटिकॉस्टल प्रीचर इस बात में विश्वास करता है? क्या इसको मानता है? वो केवल खुदावन के जो सच्चे बच्चे हैं, सच्चे सेवक हैं, वही इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनके लिए ही पौलुस ने लिखा कि तुम मेरे प्रिय भाइयों, जो जैसा कि इसहाक था वो प्रॉमिस किया हुआ बेटा था, वैसे तुम भी प्रॉमिस किए हुए बेटे हो। जो प्रॉमिस किए हुए बेटे हैं वो ही इन बातों को समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी जो सफाई और सच्चाई है जो खुदा के कलाम में पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं गलातियों 4 और उसकी 28, गलातियों 4:28 को हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की गई संतान हैं, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा, मैंने अभी कहा था, मैं आज ये नहीं बोल रहा, मैं एक पेंटिकॉस्टल मूवमेंट से बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रभु की आवाज को, खुदावंत की आवाज को सुना, हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ और अपने आप को उनसे अलग कर लो, और घृणित चीज को, नापाक चीज को मत छुओ, और तब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। आज प्रभु हमसे बात करता है जो उसके चरणों में बैठकर उसकी बातें सुनते हैं, जो किसी और गुरु से शिक्षा नहीं लेते, जो किसी पास्टर के पीछे नहीं भागते, जो किसी इंसान के पीछे नहीं भागते, पर केवल उनके पीछे जो प्रभु हमारा जो हमारा प्रभु और जो जो खुदा का कलाम है जैसा वो हमको बताता है। खुदावंत के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। आप जो इस बात का विश्वास कर सकते हैं, आप उन चुने हुए लोगों के झुंड को बिलोंग करते हैं। प्रभु का बड़ा धन्यवाद। जो इसके लिए आगे पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 6:17। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। प्रभु की बात को बड़ा धन्यवाद हो। प्रभु ने जो वादा किया, जो प्रतिज्ञा करी, वो कभी ना बदलने वाला है, और उसने इसको साबित कर दिया। भाई और बहनों, प्रभु का बड़ा धन्यवाद करें कि अब आप इस चीज पर भरोसा कर सकते हैं जो प्रभु ने कहा है, और इस पर ध्यान रखें, अपने आप पर ना देखें और उन परिस्थितियों पर, उन हालात पर अपना ध्यान ना लगाएं जिनमें कि आप पाए जाते हैं। इसमें कठिनाई है, हर जगह मुश्किलें हैं, हर जगह परिवारों में, शादियों में, और बीमारियां हैं, और बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परीक्षाएं हैं, नवयुवकों में, एडल्ट्स में, जवानों में। पर प्रभु ने कहा उनसे, इनमें से अलग हो जाओ और नापाक चीज को हाथ मत लगाओ, इनमें से निकल आओ। तुम इनके अंदर तो हो पर इनके नहीं हो, संसार के अंदर हो संसार के नहीं हो। और हम बड़े संयमी बने रहें और सादा दिल से, और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इस जमीन पर उन्हें पूरा करें, पर अंदरूनी तौर पर हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, और काम पर भी, जहां पर भी हम हैं, हम खुदा से जुड़े हुए हैं। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि ऐसा उसने होने दिया कि ये आखिरी मैसेज ये पूरी तौर से पढ़ा गया और सुना गया अनगिनत लोगों के द्वारा, बहुत सारी भाषाओं में सुना गया और उनको मिला। और ये जो आखिरी संदेश है ये आगे बढ़ रहा है, और जो आखिरी से भी आखिरी है उसको, उसकी बुलाहट हो गई है, और वो भी तैयारी में है, प्रभु के आमद की तैयारी में है। आगे पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं रोमियो आठ तीस में लिखा है, क्योंकि जितनों को उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया वो धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। प्रभु के नाम को जलाल मिले, महिमा मिले। उसने अपने सारे काम को, उसने संपूर्ण काम को संपूर्ण तरीके से पूरा कर दिया है। जो कहते हैं, जिसको उन्होंने बुलाया, जिन्होंने विश्वास किया, उनको धर्मी ठहराया और फिर उनको पवित्र किया, और उसके बाद उसने अपनी महिमा के लिए उनको ठहरा दिया। और भाइयों और बहनों, क्योंकि आप उन वादों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, आपको इस चीज का आश्वासन है, यकीन है कि प्रभु ने आपको पहले से जाना, और प्रभु ने आपको चुना, और प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको पवित्र किया, और प्रभु ने आपको बदल दिया, और उसने उस स्वर्गीय महिमा में आपको बदल दिया। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। आगे बढ़ते हैं, इब्रानियों 10:14 को हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 10:14 को अब हम पढ़ते हैं। 10:14 मेरे भाई और बहनों, कहिए क्या ये बड़ी जबरदस्त कलाम नहीं है जो कहता है, क्योंकि उसने कि हम उसके द्वारा पवित्र किए जाते हैं, और उसने कहा कि उनको पवित्र कर अपने वचन के द्वारा, क्योंकि जरा वचन ही पवित्र है, और पवित्रता बनना, आत्मिक तौर पर पवित्र होना, ये तभी होगा उनके लोगों में जिन्होंने खुदा के कलाम को सुन लिया, उसकी बातों को सुन के उस पर विचार किया, और उनके द्वारा, उसके द्वारा, उस कलाम के द्वारा ही उनका पवित्रीकरण, सेंटिफिकेशन उस कलाम के द्वारा ही हो सकता है। हम समझ सकते हैं कि जो 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 उसके द्वारा पवित्र किए जाते हैं, उसने ऑलरेडी उनको पवित्र कर दिया। क्या आप इस बात को आज शायद ना समझ पाएं, पर इसको विश्वास कर लें, इसको मान रख लें कि खुदा ने कहा है ऐसा, और उसने कहा, उसने आपको पूरा कर दिया, परफेक्ट कर दिया अपने काम के लिए। खुदावन इतना दयावान है, इतना कृपा करने वाला है, इतना भला है, उसने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हम उसके लिए इसके आभारी हैं, इतने शुक्रगुजार हैं जो कि उसके कलाम हमने सुना, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, ये बहुत जरूरी है कि हम कलाम को पढ़ें, वचन को पढ़ें, कि हम इस बात को पढ़ें कि कौन सा वचन कहां पर किस समय में अप्लाई होता है, और कब कब ये बातें पूरी हुई और कब कब पूरी होंगी, और ये भी अंत समय के बारे में भी बताता है कि हमारे प्रभु ने कहा, हमारे प्रभु ने मत्ती 24 में बताया कि हर चीज के बारे में, जो ऐसे ही कैसे कैसे क्या क्या होगा, प्रभु के वापस आने के पहले क्या क्या कैसे कैसे होगा उसने बताया। उसने लड़ाइयों के बारे में बताया, और उसने उन खबरों के बारे में बताया, और उसने अकालों के बारे में बताया, भूकंपों के बारे में बताया, उन बीमारियों के बारे में बताया, और ये इनका जान जो सारे संसार पर आ रही हैं और आने वाली हैं। हर दिन हम कोई ना कोई ऐसी ऐसी बात सुन लेते हैं, और फिर बार बार, और जो सच्चे ईमानदार होने के नाते हम देखते हैं कि जब प्रभु कहता है, जब प्रभु हमें बताता है, जब ये सारी चीजें होते हुए देखो तो अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारी निजात, तुम्हारा उद्धार एकदम निकट है। हम अपने सिरों को ऊपर उठा कर देखते हैं, क्योंकि भाई और बहनों, हम अंत समय के शुरू में नहीं रह रहे, हम तो अंत समय के अंत में रह रहे हैं, और जो प्रतिज्ञाएं, जो वादे खुदावन की के लिए और इज़राइल के लिए और उस धरती के लिए, जो वाचाएं, जो प्रतिज्ञाएं, जो वादे किए गए, वो हमारे समय में पूरी हुई हैं। और तब 1948 से दूसरी लड़ाई के, दूसरे महायुद्ध के समय से हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल की सारी भविष्यवाणियां, नबूवतें पूरी हो गई हैं और वर्ल्ड वाइड पूरी हो गई हैं, और हम जानते हैं कि हम अपने अपने सिरों को ऊपर उठाते हैं, और हम जानते हैं कि हमारा उद्धार बिल्कुल नजदीक है। हम तो इन समय में बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े भी हो रहे हैं, और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसका शुक्रगुजार हूँ कि अब और अब हम ये इस बात पर विश्वास करते हैं कि खुदावन ने अपने अपने सेवक को, अपने खादिम को इस समय में नबी को भेजा, और जैसा कि उसने भी कंफर्म किया, ऐसा प्रभु ने उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे कंफर्म किया था। तो मैं दोबारा से खास तौर पे इसको कह रहा हूं कि माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पर, वहां पर प्रभु, वहां पर एलिया और मूसा दोनों मौजूद थे, वहां पर उनकी मौजूदगी में पतरस भी था, यहुन्ना भी था, याकूब भी था। तब उसने कहा कि एलिया तो पहले आएगा, यानी फ्यूचर में आएगा, आने वाले वक्त में आएगा और हर चीजों की बहाली करेगा, वापसी करेगा। प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो इस बात के लिए, और इस बात के आज ये सबक, आज ये वचन हमारे सामने पूरा हुआ और सारी बातें पूरी हो चुकी हैं, और फिर ये बातें पूरी हुई हैं और अब हम सच्ची कलीसिया में खड़े हैं, और ये कलीसिया जो है उन सभी गलत शिक्षाओं में से बाहर निकाली गई है, बुलाई गई है, और जैसा हमारे प्रभु ने कहा उस माउंट ऑफ ऑलिव्स पे, प्रभु ने कहा था कि इस बात को नोट करो, ध्यान रखो कि तुम्हें कोई धोखे में ना डाल दे, कि ये वचन आज भी, मैं ये फिर कहना चाह रहा हूं, जो भी इस बात पर यकीन नहीं करता, इसको सुनता नहीं जो प्रभु ने वहां कहा था, जो इस पर यकीन नहीं करता, इसको नहीं मानता, वो जो उन लोगों को जो शिक्षा, दूसरे शिक्षा लोग शिक्षा दे रहे थे जो उनकी मानता रहा, और जो इवेंजलिस्ट चाहे कह रहे थे या दूसरे प्रचारक कह रहे थे, वो तो गलत रास्ते पर भटकेगा। सिर्फ वही जो प्रभु ने कहा, जो उस बात को समझते हैं, केवल वही, ये जो आज आत्मा के द्वारा प्रभु कलीसियाओं से कह रहा है, जो इस बात को सुनते हैं और जिनके पास वो कान हैं, जो खुदावन ने कान खोल दिए, ये वही हैं जो इस बात को सुन पाएंगे कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा। ये नहीं कि जो कोई भी कुछ कहे जा रहा है, बल्कि जो प्रभु कह रहा है। मैं एक बारी फिर विश्वास में होकर ये कह दूं कि हम और किसी इंसान के चरणों में बैठकर शिक्षा नहीं लेते, बट केवल प्रभु के चरणों में बैठकर के शिक्षा लेते हैं और सुनते हैं उसके वचन को, और प्रभु के संतान होने के नाते हम केवल उन बातों पर विश्वास करते हैं जो उसने हमसे प्रतिज्ञाएं करी, वादे किए हैं, और हम उन सारी चीजों को अनुभव होता हुआ अपने जीवनों में, सारे वादों को होता हुआ देखेंगे। जैसा उसने कहा था, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं और मैं आऊंगा और तुमको अपने अपने साथ ले जाऊंगा। जो इस बात को आज सुनता है प्रभु की आवाज को, वो उस आवाज को भी सुनेगा और वो कहेगा, और वो वहां पर जरूर होगा कि जब प्रभु अपने लोगों को घर ले जाने के लिए आएगा तो उनके साथ हो गए। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, और उस उद्धार के पूरे किए हुए काम के लिए उसका बड़ा धन्यवाद हो। हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं उसके कलाम के लिए, और खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं, और उस पवित्र आत्मा के लिए जो हमारी अगुवाई करता है और सारी सच्चाई में पाखरू हमारी अगुवाई करता है। और मेरे भाई और बहनों, मैं ये पूछता हूं कि अब हम खड़े हो जाएं और भाई बोग जो हैं वो एक प्रार्थना पढ़ेंगे जो प्रभु ने हमारे दिलों में डाली है, और प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। अब हम वो प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, अब मेरे स्वर्ग की बचाने वाले प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस वचन के लिए, उस वाचा के लिए जो तूने हमारे साथ बांधा, और मैं धन्यवाद करता हूं उस लहू के लिए जो तूने हमारे लिए बहाया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने बड़े गैर वादे हमारे लिए किए, हमारे साथ किए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने उन सारे वादों का हमारे जीवन में पूरा किया है। आमीन, 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 हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन।